अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के बाजारों में प्रमुख वस्तुएं एशिया के मसाले व इटली में निर्मित चीज़ें थीं। यह व्यापार इटली के व्यापारियों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैला हुआ था। 17वीं शताब्दी में इस स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ। हॉलैंड, इंग्लैंड व फ्रांस ने एशियाई वस्तुओं के लिए पहले लेवेंट, तुर्किस्तान आदि से स्वतंत्र संबंध स्थापित किए और शताब्दी के अंत तक एशिया के सुदूर देशों तक उनके जहाज जाने लगे। यूरोप के आंतरिक व्यापार की स्थिति और भी ज़्यादा बदली। विलास सामग्री के बजाय हॉलैंड व इंग्लैंड के जहाज़ों ने गेहूं, मछली, इमारती लकड़ी, सस्ता कपड़ा जैसी वस्तुओं को व्यापार में बढ़ाया, जो कि उत्तरी व उत्तर पूर्वी यूरोप से खरीद कर दक्षिणी यूरोप तक बेची जाती थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गेहूं का व्यापार था। कृषि संकट के सम्मुख पहले बाल्टिक सागर के रास्ते पोलैंड से गेहूं लाया गया और धीरे धीरे इसमें इंग्लैंड का योगदान भी बढ़ा। इन भारी भरकम वस्तुओं का व्यापार हॉलैंड के फ्लोइट जहाज के कारण ही संभव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह बढ़ना और फैलना एक नई व्यावसायिक संस्था के कारण संभव हुआ। यह संस्था संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहलाती थी। ये कंपनियां शेयर बेचकर व्यापार के लिए पूंजी इकट्ठी करती थीं तथा संसार में फैले व्यापार का प्रशासन इन कंपनियों द्वारा संभाला जाता था। इनमें सबसे प्रमुख डच ईस्ट इंडिया कंपनी व इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। व्यापार के क्षेत्र में अंग्रेज व डच लोगों का यह साहसिक अभियान क्या उनके खास सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित था? क्या हमने अभी तक देखा नहीं कि इन देशों में कृषि व उद्योग इतने प्रगतिशील थे कि यहाँ बड़ी योजनाओं में पूंजी निवेश करने में खतरा कम था और उसे बढ़ाने का प्रोत्साहन अधिक?